ऐसे स्वराज्य अधिकारी भाई बहनों का बेहद तपस्या भूमि मधुबन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी हंसों का एक हाथ की ताली से हम अभिनंदन करते हैं। अभी हम भट्टी की विधिवत शुभारंभ करने के लिए परम सम्माननीय आदरणीय राजयोगिनी राजस्थान के अंतर्गत रूहानी बगिये को रूहानी खुशबू से भरपूर करने वाली संगम युग का अभिमन्यु संपूर्ण कलाओं की परिपूर्ण प्रतिमा प्यारे बाबा का कोहिनूर डायमंड ऐसी शीतला देवी कुशल प्रशासिका राजयोगिनी पूनम दीदी का आवाहन करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो मंच पर आए और हम सब होली हंसों को भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य पर अपनी सारगर्भित अनुभूतियों को मार्ग प्रदर्शना को हम सब के बीच वरदानी बोलों से हम सबको प्रदान करें। आदरणीय राजयोगिनी पूनम दीदी का हम सभी एक हाथ की ताली से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और प्यारे बाबा के समान संपूर्ण गुण शक्तियों को भट्टी के लक्ष्य और उद्देश्य के द्वारा अपने अंदर मन के धरातल को तैयार करते हैं। आदरणीय दीदी,
ओम शांति। ये हम सबका परम सौभाग्य है कि मधुबन वरदान भूमि साकार बाप की तपस्थली विश्व का लाइट हाउस माइट हाउस और कर्म भूमि पर हमें योग तपस्या करने का सौभाग्य मिला तो हमें अपने भाग्य पर नाज है कि हम बाप दादा के इस तपोभूमि में कर्म भूमि में बाबा के मिलन की अनुभूति के लिए बाबा से वरदान और शक्ति लेने के लिए यहां पहुंचे हैं। ऐसे तो साकार बाप से आप लोगों ने पालना नहीं ली, लेकिन बाबा अपने बच्चों की पालना सूक्ष्म रूप से कर रहा है और करोड़ों में कोई, कोटों में कोई, कोई में भी कोई हम बच्चों को स्वयं बुलाता है, आवाहन करता है, आओ प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे, झोली भरो, अपने आप को रत्नों से श्रृंगारो। तो कितना सुंदर अवसर है, चार दिन का आपको ये सुनहरा मौका मिला है, तो इसको आप खोना मत। खोएंगे कैसे? तन से तो आ गए, लेकिन मन से भी पूरे यहां पर उपस्थित रहना है। इसको हम मौन भट्टी तपस्या कहते हैं। भट्टी में क्या होता है? आग लगाई जाती है, प्रज्वलित की जाती है, तीव्र अग्नि में ईंटें पकती हैं, कुछ कच्ची रह जाती हैं, कुछ पक जाती हैं। कोयला है, कोयला आग में जलता है, काला कोयला आग में लाल हो जाता है और बाद में सफेद हो जाता है, राख उसकी सफेद हमें मिलती है। तो रंग रूप सब बदल जाता है। और कितना हल्का, राख कितनी हल्की है। इसी तरह बाबा भी कहते हैं ना, योग अग्नि है। इस अग्नि में आत्मा तपेगी तो काली, पहले तो लाल होगी और फिर सफेद, उज्जवल, निर्मल, पवित्र हो जाएगी। और बिल्कुल राख सारे पुराने संस्कार विकार जल जाते हैं। पेड़ भी आप काटो, खत्म करना चाहते हो किसी पेड़ को, जड़ से काटो, लेकिन जड़ से काटने के बाद भी क्या पेड़ का अस्तित्व समाप्त हो जाता है? नहीं। फिर पानी, मौसम, धूप, खाद मिलने से वो पुनः पनपने लग जाता है, बढ़ जाता है। तो क्या किया जाता है? जलाया जाता है। जलने के बाद बीज दोबारा फलीभूत नहीं होता है। इसी तरह हम भी अपने अनेक संस्कार स्वभाव की डालियों को, कमी कमजोरियों को काटते हैं, खत्म करते हैं, लेकिन काफी कुछ करने के बाद भी कई बार ऐसा लगता है ना, फिर आ गए। फिर वातावरण का प्रभाव, संघ का प्रभाव, पुराने संस्कार, कुछ भी प्रभाव डालते हैं तो फिर उभर जाते हैं, फिर वही वृक्ष तैयार हो जाता है। तो सबसे उत्तम विधि है जलाई दो। जलाने के बाद तो नहीं दोबारा वृक्ष तैयार होगा। तो यहां क्या करना है? बाकी जलाना है ताकि दोबारा फिर वो पनपे नहीं। तो ऐसे उद्देश्य से आए हैं। उद्देश्य में सफलता तभी मिलेगी जब हम दृढ़ निश्चय से, पूरी लगन से, एक निष्ठ होके, पूरी मनोयोग से, मनोयोग पूरा, एकाग्रता पूरी हो और अपने इस चार दिन के ज्ञान योग की, दैवी गुणों की धारणा की क्लासेस में इन्वॉल्व हो जाए, डूब जाए। और आप देखेंगे इसको ज्वाला भट्टी भी कहते हैं, ज्वाला योग भी आपने नाम सुना होगा। वैसे चूल्हा जलाते हैं ना, लकड़ी डालते हैं, दो चार छह डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, अग्नि प्रज्वलित होती जाती है। जितनी ज्यादा लकड़ी डालेंगे उतनी ज्यादा प्रज्वलित होगी। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? श्रेष्ठ संकल्प, शुभ संकल्प, पवित्र संकल्प, अच्छे संकल्प, बाबा की याद के अपने अंदर उत्पन्न कर रहे हैं। और जितने ज्यादा ये बढ़ते जाएंगे ना, ये लकड़ियां संकल्पों की, बढ़ते 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 इतनी आप में ऊर्जा आ जाएगी, इतनी एनर्जी आ जाएगी कि अपने आप को आप फुली चार्ज्ड महसूस करेंगे कि हम फुली चार्ज्ड हो गए। तो सुबह आपका 4 बजे से कार्यक्रम आरंभ, 1 बजे तक, फिर शाम को 5 बजे से आरंभ, 8 बजे तक। तो जितना ज्यादा ये समय श्रेष्ठ संकल्प ज्ञान के क्लासेस में, बाबा की याद में, जितना अधिक से अधिक मन इसमें होगा, बुद्धि योगी पूरे मनोयोग बुद्धि योग से रहेंगे, तो 4 दिन में क्या होगा? इतनी ज्यादा एनर्जी बिल्डअप होगी, इतनी ज्यादा स्प्रिट आपकी डेवलप होगी कि आप अपने आप में एक परिवर्तन महसूस करेंगे, जैसे हम फुली चार्ज्ड हो गए, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति बन जाए तो बाबा का लक्ष्य भी पूरा हो। बाबा चाहता है हर बच्चा बाप समान बने, बाबा की आशा पूरी होगी। हम सब बाबा की आशाओं को पूरा करने वाले बच्चे। बाबा चाहता है एक एक बच्चा उसमें बाप नजर आए, बाप समान बने, विश्व कल्याणकारी बने, अपने वाइब्रेशन मनसा सेवा से परिवर्तन प्रकृति का भी आत्माओं का भी लाए। तो कितनी ऊंचे लक्ष्य को लेकर हम आए हैं और कितनी ऊंची साधना है ये हमारी, मन की साधना, बुद्धि की साधना, नैनों की साधना, इंद्रियों का संयम, वाणी पे मौन। वाणी पे मौन रखना कम बात है। चार दिन आपकी वाणी संयम भी है, मन का संयम भी है, अन्न का भी है, निद्रा चीत भी है। तो ये साधना है हमारी, तपस्या साधना या। और आज की मुरली में देखो बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई, वेट पे, शरीर का वेट घटाते हो, क्यों बढ़ता है वेट? अनावश्यक खाने से, तला भुना खाने से वेट बढ़ता है ना। बासी भोजन खाते हो तो डाइजेशन अपसेट हो जाता है। तो मन पे भी वजन बोझ आत्मा पे कैसे बढ़ता है? बीती बातों का चिंतन कर रहे हैं, पास्ट की बातें, ये क्या है? बासी भोजन है। बासी भोजन लोगे तो मन बीमार होगा, अनेक रोग मन के बढ़ेंगे, आप जानते हो मन के रोग। और तला भुना भोजन क्या लेते हैं हम? तेरी मेरी, इधर उधर की मिलते हैं ना, तो दो ज्ञान की बात करेंगे, ऐसा नहीं है, अच्छी बात करेंगे, पुरुषार्थ की, सेवा की, उमंग उत्साह की, खुशी की, प्राप्ति की, फिर तेरी मेरी शुरू। दो मिनट बाद टॉपिक कहाँ चला जाता है? तले भुनी बातों में इधर उधर का। तेरी मेरी बातें चटपटी है ना, सुनने में अच्छी लगती हैं। नमक मिर्च लगा के बोलने वाले बोलते हैं, नमक मिर्च लगा के मसाला लगा देते हैं और वो हमें अच्छा लगता है। चटपटा भोजन तो सबको ही अच्छा लगता है और अट्रैक्ट हो ही जाते हैं, फिर वो समय उधर चला जाता है। तो यहाँ चटपटा भोजन भी नहीं लेना है ना, बासी भोजन भी नहीं लेना है ना, ताजा ज्ञान योग का भोजन खाओ, फ्रेश। फ्रेश लोगे तो स्वस्थ हो जाओगे, मन स्वस्थ, तन स्वस्थ, फ्रेश रोज मिलेगा आपको। जो मुरली में बताया जाता है, जो आपको दीनिया अभ्यास कराएंगी, जो आपको पुरुषार्थ बताएंगी, वो उसी समय उसी दिन करना। बाबा भी कहता है ना, आज मुरली में जो वरदान मिला, आज जो सम्मान मिला, आज जो सेवा की बात मिली, आज बाबा ने कहा मंदिर में जाना है, शमशान में जाना है, उसी दिन करना है होमवर्क, फ्रेश है ना, उसी दिन काम कर लो। ज्ञान की बात भी जो मिली उसी दिन उसकी अभ्यास कर लो, पुरुषार्थ की, सम्मान की, नशे की, तो लाभ भी होगा। और आप सोचो कर लेंगे, अब बाबा ने चार दिन पहले का और आप चार दिन बाद कर रहे हो तो क्या होगा? ताजा भोजन खाया, फ्रेश फल लिया, फ्रेश तो नहीं लिया ना, तो उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी। आपको जो रोज बताया जाए सुबह शाम, जो भी पुरुषार्थ की विधियां, जो भी सम्मान की बातें या जो भी होमवर्क मिले, आप ये लक्ष्य रखना, मुझे तुरंत पूरा करना है, फ्रेश लेना है, पुरुषार्थ पर पूरा ध्यान देना है, तो समय का भरपूर लाभ लेंगे और मुक्त हो जाएंगे बीमारियों से। नेचुरोपैथी में जाते हैं हर साल, कुछ लोग मैंने देखा हर साल जाते हैं, क्यों जा रहे हो, बीमारी तो है नहीं, कोई बात नहीं, इतने दिन जो टॉक्सिन जमा हो गया है ना, जो विषैले तत्व जमा हो गए हैं, तो तीन दिन नेचुरोपैथी कर लेते हैं, तीन दिन में सारे जो जमा है थोड़े बहुत घुटनों में इधर उधर वो निकल जाएंगे। एकदम बीमारी बाहर आए, भयंकर रूप ले उससे तो अच्छा है ना, थोड़े थोड़े दिन में कर लो, चले जाओ तो आपकी बॉडी क्लीन रहेगी, वर्कशॉप में जाती रहेगी तो क्लीन रहेगी और बड़ी बीमारी बाहर नहीं आएगी। तो हमारे अंदर भी जो थोड़ी थोड़ी आती हैं बातें, नेगेटिविटी, व्यर्थ बुराइयां, पुराने संस्कार उभर आते हैं, पिछले कर्मों के हिसाब किताब ये सब आ जाते हैं, तो यहाँ आप किस लिए आए हो? वर्कशॉप में आए हो ना, बॉडी मन को क्लीन करने आए हो। प्राकृतिक चिकित्सा ये एक तरह से ये मन की चिकित्सा है, तो ये भी हर साल आवश्यक है। हर साल हम करें, कम से कम साल में एक बार, नहीं तो साल में दो बार तो क्लीनिंग प्रोसेस रहे और जमा नहीं हो और हम जल्दी से संपूर्णता की ओर आए। समय भी समीप है, समय अपनी घंटियां बजा रहा है तो संपूर्णता के समीप आना है। जल्दी जल्दी तीव्र पुरुषार्थ करके अपनी मंजिल पर पहुंचना है। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ मैं भी आपके साथ हूँ योग तपस्या में। हम सब मिलकर राजस्थान को क्या बनाएंगे? दैवी राजस्थान, राजाओं की भूमि है। तो आप सब होवनहार राजाएं, स्वराज्य अधिकारी राजाएं, अभी कर्मेंद्रियों के राजा, फिर विश्व के राजा, तो ऐसे होवनहार महाराजाओं को, महारानियों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है आप सबका। ओम शांति। आप सबकी कोऑर्डिनेटर है भट्टी की हमारी कविता बेन, भरतपुर से हैं। ज्योग्राफिकली तो भरतपुर राजस्थान में ही आता है, लेकिन अपनी बाबा की ज्योग्राफी में भरतपुर आगरा जोन में आता है। आगरा जोन में है भरतपुर, क्योंकि आगरा राजस्थान का बॉर्डर है ना, तो आगरा से खुला है। जब साकार बाबा थे ना, तब सेवाओं का विस्तार मुश्किल होता था, कठिन था, वातावरण भी ऐसा नहीं था, लोग बहुत गलत फहमियों में होते थे। तो जिसको जहाँ निमंत्रण मिलता था ना, तो वो वहाँ पे सेवा आरंभ करते थे, सहयोग मिला तो सेवा आरंभ हो जाती थी। तो आगरा वालों को भरतपुर मिला निमंत्रण, उन्होंने वहाँ कर लिया। इंदौर वालों को कोटा में मिला, झालावाड़ में मिला, उन्होंने वहाँ कर लिया। अब इतनी सेवाएं हैं तो अब जोन्स बन गए, अब बाउंड्रीज बन गई, लिमिट्स बन गई। तो खैर हम तो मन से तो बेहद में है, कार्य क्षेत्र में हद में है। कार्य क्षेत्र तो हद में ही होगा, अब बुद्धि हमारी बेहद में होगी। तो आप हमारी कविता बेन कोऑर्डिनेटर हैं। हम लोग कितने लकी हैं कि हमें कविता बेन जैसी बहन मिली। आप रिलीजियस विंग में भी हैं, तो वैसे ही आप स्पिरिचुअली ओरिएंटेड है और नेताओं की, धर्म नेताओं की सेवा करती हैं, और आपको बहुत आध्यात्म की गहराई भी है, योग तपस्या भी आपकी बहुत अच्छी, त्यागी तपस्वी बहन मिली है। तो कविता बहन का मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ कि वो सारे कार्यक्रम को चलाएंगी और हम सबको मार्गदर्शन भी देंगी। आप लोगों ने भट्टियां तो पहले भी की होंगी अपने अपने स्थानों पर, लेकिन मधुबन में आने से वातावरण का भी एक बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। यहाँ कितने वर्षों से योग तपस्या चल रही है और हमारी अनन्य दादियां, हमारे वरिष्ठ भाई यहाँ रहे हैं, उन सबके वाइब्रेशन से पूरा मधुबन फुली चार्ज्ड है। तो जहां भी जाएंगे आपको क्या दिखाई देगा? बाबा, दादियां, वो यहाँ कण कण में बसे हुए हैं। कहीं भी जाओ उनकी महसूसता होती है, फीलिंग आती है। दादी प्रकाशमणि की भी, मनमोहिनी दीदी की भी, बाबा की, सब की, तो सब की पालना मिलती है ना यहाँ पे। और एक और बहुत बड़ा लाभ क्या है, चार धाम है ना। भक्ति में तो कितने धक्के खाने के लिए जाते हो आप, चार धाम की यात्रा करते हो, पैसा भी खर्च करते हो, समय भी लगाते हो, शक्ति भी, और कईयों को तो कितनी कठिनाइयों से जाना होता है, होती है ना इतनी कठिनाइयां, और यहाँ एक ही स्थान पे आपको चार धाम मिल गए ना एक ही स्थान पे, भटकने की जरूरत नहीं, धक्के खाने की जरूरत नहीं। यहाँ चार धाम कौन से हैं जानते हैं आप? शांति स्थम, शांति की अनुभूति के लिए, बाबा का कमरा, बाबा से दिल की बातें करना है, रूरिहान करनी है, बाबा की कुटिया, जो मन में उलझन है बाबा को दे दो, जवाब मिलेगा। हिस्ट्री हॉल, विघ्न आते हैं ना तो हम घबरा जाते हैं, छोटी सी बात नहीं, समस्याएं आती हैं हम इतने विचलित हो जाते हैं, पर आप हिस्ट्री हॉल की एक एक फोटो देखोगे ना तब आपको इतनी प्रेरणा मिलेगी, इतनी आपको हिम्मत आएगी। उस समय जो विघ्न आए, उस समय जो सहन किया हमारे वरिष्ठ दादियों ने, बड़ों ने, उस समय जो बातें आई वो आज कुछ भी नहीं है, क्योंकि शुरुआत थी, स्थापना थी, तो स्थापना में विघ्न तो आने ही थे, और बिल्कुल नया ज्ञान, नई बातें, भक्ति से विपरीत धारणाएं हमारी, ब्रह्मचर्य, अन्य शुद्धि जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, यहाँ की ब्रह्मचर्य की बात, अनशुद्धि की बात, भक्ति से विपरीत बातें, इतनी लोग भक्ति की दलदल में, तो आप बताओ कितने विघ्न आए होंगे। और जो बहनें आईं, जो परिवार आए जिन्होंने समर्पण किया, तो उनको लोक, लाज, कुल, मर्यादा, समाज कम सहन करना पड़ा। आज कुछ भी नहीं, आज तो खुली किताब है जीवन, और जीवन में भी इतना सरल है, डाइवोर्स लेना भी आज सरल है, शादी करना भी बहुत सरल है, जहां मन में आए करो शादी, कोई रोक टोक नहीं है, अंतरजातीय विवाह करो, कहीं भी जाओ, जॉब करो, नहीं करनी शादी मत करो, तलाक लो, सब कुछ सह देना। और उस समय कितनी बेड़ियां थी, उन बेड़ियों को काट के आए, कितने विघ्न बाधाओं को पार किया। तो हिस्ट्री हॉल में हमें वो प्रेरणा मिलती है कि जब वो लोग इतना सब विघ्नों को पार करके आगे बढ़े, और यज्ञ के जहाज को तूफानों से निकाल के आज यहाँ लाके खड़ा किया, जिसमें हम आराम से जा रहे हैं, इस जहाज पे बैठे हैं, हमें कोई तकलीफ है? बाबा हमें आराम से ले जा रहा है भव सागर से पार, विषय सागर से क्षीर सागर में, और वो तो इतने तूफानों से निकाल के लाए। तो हिस्ट्री हॉल में जाने के बाद, एक एक तस्वीर को देखने के बाद, क्या लगता है हमारे आगे तो परीक्षाएं कुछ भी नहीं है, हैं? देख दो, ये कुछ भी नहीं है, ये तो कागज का शेर है, फूंक मारो उड़ जाए, सचमुच के शेर नहीं है, कागज का शेर है, केवल फूंक मारने की जरूरत है। तो चार धाम की यात्रा का यहाँ मौका कितना अच्छा मिला है ना। और आप एक बार नहीं, दिन में चार बार करो चार धाम, मुरली से पहले करो, 10 बजे की क्लास से पहले करो, शाम की क्लास से पहले करो, रात को सोते से पहले करो, तो कितना पुण्य हो जाएगा, है ना? पुण्य लाभ बहुत बड़ा पुण्य, और ये भी कोई पूर्व जन्म के पुण्य कि यहाँ हम आए हैं, और यहाँ सबको आने का मौका नहीं मिलता। तो वाह रे मैं, वाह मेरा बाबा, और वाह मेरा भाग्य। तो मधुबन की विशेषताएं, कितना अच्छा लग रहा है, चार धाम की विशेषता, और क्या विशेषता है मधुबन की, अब आप लोग बोलो और बताओ। मधुबन शीश महल है, शीश महल में जाते हैं ना तो सब स्पष्ट नजर आता है, कितना भी छुपाओ छुपेगा नहीं, छुपेगा। तो मधुबन भी ऐसा शीश महल है कि यहां हम आते हैं, यहां हमें अपनी सूक्ष्म कमजोरियां, दाग दिखाई देते हैं, रियलाइजेशन होती है। अपने अपने स्थानों में तो ठीक है, हम एक घंटा गए क्लास में, मुरली सुनी, बाबा को याद किया, उस समय थोड़ी रियलाइजेशन तो होती है। देखो बाबा हमें कहां से कहां ले जा रहा है, बाबा हमें क्या देखना चाहता है, बाबा की हमारे में कितनी उम्मीदें हैं, उस समय थोड़ा फील तो होता है, हाँ नहीं होना चाहिए। और अपने आप से संकल्प भी करते हैं कि ठीक है परिवर्तन करेंगे, और बाहर निकले, घर आए, कारोबार में बिजी हो गए, सब भूल जाते हैं। और जो थोड़ा असर भी आया ना, वो असर बाहर के वातावरण में आने पर गायब हो जाता है। क्यों? बाहर नेगेटिव ज्यादा है, तो जो थोड़ी बहुत आप में चेतना जागृत हुई, अंतरात्मा में कुछ महसूसता हुई, लेकिन बाहर इतनी नेगेटिविटी है, इतने वाइब्रेशन दूषित है कि वो उसमें सब मिल खत्म हो जाते हैं, होता है ना? तब हमें क्या लगता है, वैसे के वैसे। और कई बार मैं कई भाई बहनों को देखती हूँ, उनमें गिल्ट फीलिंग तो आती है कि अरे हमारी में परिवर्तन नहीं हुआ, अभी भी वही पुरानी बातें आ जाती हैं, पता नहीं कहाँ से गिल्ट फील भी होती है, पश्चाताप भी करते हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं, और दृढ़ता से एकदम फिनिश नहीं कर पाते हैं। और जब यहाँ आते हैं तो यहाँ बाहर के वातावरण के प्रभाव से बचे हुए हैं, कोई कारोबार नहीं है, और बाबा ने तो आपको हाथ में भोजन चाय सब कुछ दी है, पकाने की प्लानिंग करने की भी जरूरत नहीं है, क्या भोजन बनाना है, क्या होना है, कुछ नहीं। और कितना अच्छा भोजन मिल रहा है, स्वादिष्ट भोजन, विविधता पूर्ण वाला भोजन, सब कुछ मिलेगा, तो किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, तो चिंतन भी नहीं है, चिंतन भी नहीं करना है शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, कोई किसी प्रकार की बात नहीं है। तो यहाँ हम आए हैं, हर तरह से फ्री हैं, व्यवस्थाएं करने से, कारोबार से। अब एक ही उद्देश्य, हमारी मनोहर दादी बहुत अच्छा बताती थी, यहाँ मधुबन आते हो तो क्या है, बस गिलास और किलास, गिलास क्लास और पानी का गिलास, क्लास और गिलास दो ही बातें है, तो यही मिलता है ना। तो अब यहाँ आ गए शीश महल में, तो जैसे जैसे आप आगे क्लासेस सुनते जाएंगे, गहराई आपको हर सब्जेक्ट की मिलेगी, समय है, सुनाने वालों को भी समय है, आपको भी समय है, समय की सीमा नहीं है। तो जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे तो आपके अंतर के पर्दे खुलते जाएंगे, परते खुलेंगी, प्याज की परते खुलती जाती हैं, खुलती जाती हैं। तो वो जब अनकॉन्शियस माइंड तक जाएगा, फिर आपको सूक्ष्म अपनी कमी कमजोरी रियलाइज होगी कि अब तक तो हमने इस बात की गहराई सोची नहीं थी, समझी नहीं थी, ये भी हमारा पाप चढ़ता है, ये भी हमारा बोझ है, इस तरह भी हम अपने ऊपर कर्मों के हिसाब बना रहे हैं, ये सोचना भी हमारा हिसाब किताब पैदा कर रहा है। कई बार हम अपने संकल्पों पे ध्यान नहीं देते कि ये सोचना भी गलत है, ये विचार लाना भी पाप है, ऐसा मानना भी हमारा ठीक नहीं है, तो सूक्ष्म बातें हमें गहराई पता चलती है। तो आत्मदर्शन होता है शीश महल में, दर्पण एकदम क्लियर है, ज्ञान योग की क्लासेस ज्ञान दर्पण है ना, तो शीश महल में सब धीरे धीरे क्लियर होता जाता है, और हमें महसूस होता है कि यहाँ कहाँ कहाँ हम गलतियां कर रहे हैं और कहां कहां हमसे चूक हो रही है जिस कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये छोटी छोटी बातें आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, हमारे कदम को रोक के रखती हैं, पीछे भी नहीं जा रहे हैं, गिरती कला में भी नहीं है लेकिन चढ़ती कला का भी अनुभव नहीं हो रहा है, खुशी नहीं बढ़ रही है। चढ़ती कला में क्या अनुभूति होगी? खुशी बढ़ती जाएगी, अतीन्द्रिय सुख बढ़ता जाएगा, आनंद की स्थिति आएगी। बहुत संसारिक बातों का आनंद नहीं, आत्मिक आनंद में नहीं है। समस्याएं अपनी जगह है, वो पेपर है, परीक्षाएं अपनी जगह है, तूफान अपनी जगह है। बाहर तूफान और अंदर आनंद। ज्वाला देवी के मंदिर में कहते हैं वहां एक ऐसा ज्वाला जलती रहती है, ज्वाला बहुत गर्म है और पानी है ना, उंगली डालो तो एकदम पानी शीतल है, बर्फ जैसा। आग जल रही है, दीपक जल रहा है और पानी शीतल, ये हमारी स्थिति है। बाहर तूफान है, आग है, आग जैसी बातें हैं, अग्नि है, स्वभाव की अग्नि, विकारों की अग्नि, प्रकृति की, हर तरह आग ही आग है, चारों तरफ आग ही आग है। लेकिन हमारा मन कैसा है? शीत है, बर्फ, शांत। ये हमारा ही तो यादगार है ज्वाला देवी। तो हम प्रैक्टिकल में ऐसा बने हैं तो अपनी स्थिति हम ऐसी कब बनाएंगे? जब हम पूरे अपने अंतर मन को क्लीन करेंगे, अपने अंदर गहराई से अपने आप को देखेंगे, आत्म दर्शन करेंगे। और ये दर्शन करने का मौका ये शीश महल में ही है। दर्शन करो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को जानना, देखना। और सेल्फ रियलाइजेशन, केवल कमियों की रियलाइजेशन नहीं, अच्छाइयों की भी, क्वालिटीज की भी रियलाइजेशन, अपने गुणों की भी रियलाइजेशन, अपने आदि स्वरूप की भी रियलाइजेशन। हम पांच स्वरूप का अभ्यास करते हैं, अनादि, आदि, मध्य, ब्राह्मण, फरिश्ता। हर एक करते ही होंगे, सप्ताह में तीन दिन, चार दिन, रोज, दिन में एक दो बार, अपना अपना पुरुषार्थ है ये तो, हर एक पुरुषार्थी है। लेकिन आपको यहाँ आदि स्वरूप की भी रियलाइजेशन मिलेगी, देवता स्वरूप के, फिर अपने मध्य पूज्य रूप की भी रियलाइजेशन, अपने ब्राह्मण जीवन की भी रियलाइजेशन, फरिश्ता स्वरूप की भी रियलाइजेशन। तो आत्मानुभूति क्या है? अपने आदि स्वरूप की रियलाइजेशन में आना। ये तो कई बार हम कहते हैं हाँ देवता है, ठीक है, बाबा कहता है ना हम देवता रहे हैं, मान लिया देवता रहे हैं, थोड़ा सा आदि स्वरूप में जाते भी हैं, दैवी स्वरूप को इमर्ज भी करते हैं, अपने स्वर्ग के महलों को, खुशियों को करते हैं, लेकिन दिल की गहराई से नहीं करते। ठीक बात है ना, वो एकदम उसमें डूब नहीं जाते कि हाँ मैं नारायण हूँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही स्वर्ग का राजा हूँ। अब आप यहाँ इस रियलाइजेशन को दिल की गहराई से करना, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आदि स्वरूप की और अपने मध्य स्वरूप की, पूज्य रूप की भी रियलाइजेशन करना कि वास्तव में ये मेरी पूजा मंदिरों में हो रही है, मेरा ही ये दैवी स्वरूप है, मेरे ही भक्त मुझे पुकार रहे हैं। तो सचमुच मैं कहती हूँ आपको घंटियां सुनाई देंगी, भक्तों की पुकार भी सुनाई देगी, भक्त आपको पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हमारे इष्ट देव देवियों हम पे रहम करो, हमको दो। बाबा कहते हैं ना मुरलियों में, आपके भक्त आपको पुकार रहे हैं, आपको उनकी पुकार सुनाई नहीं देती, वो आपसे चाहते हैं शांति, शक्ति, खुशी, मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं। तो आप देखना कि शायद आपको यहाँ अपने पुच्छ रूप की रियलाइजेशन हो जाए। आपके भक्त आपको पुकार रहे हैं तो आप उनकी मनोकामनाएं पूरी करो, साक्षात्कार कराने जाओ। सेल्फ रियलाइजेशन है ना ये। फिर यहां से आप ये विश्व के लाइट हाउस पे बैठे हो, माइट हाउस का ये स्थान है, तो इस स्थान का भी लाभ है लाभ। तो आप यहां से विश्व की परिक्रमा करके देखो, ये रियलाइजेशन लक्ष्य लेके रहना आप चार दिन, तो बाबा आपको जरूर कराएगा। यहां से आप विश्व की परिक्रमा करो, चलो आपका विमान यहां से उतरे और यहीं लैंड करे। अपने अपने स्थानों से थोड़ा मुश्किल होता है, क्यों, उड़ता है विमान फिर नीचे आ जाता है, माया के बादल आ गए ना, धरती का आकर्षण आ गया, फिर विमान नीचे आ जाता है, फिर कोई आपात आ जाती है, फिर बुद्धि का विमान उड़ता है, फिर नीचे आ जाता है। ऊपर तो नहीं जा पाता है ना, नहीं जा पाता ना, बीच में थोड़ा जाके आ जाता है। पर यहाँ आपको कोई ऑब्स्टिकल नहीं मिलेगी, कोई रुकावट नहीं मिलेगी, देह और दुनिया की कोई आकर्षण नहीं है। आपका यहाँ से विमान ऊपर जाए, ये बहुत अच्छी जगह है, जाएगा सीधा जाएगा, परिक्रमा बाबा के साथ विश्व की करेगा, बुद्धि का विमान बाबा के साथ आप करना, और यहीं लैंड करेगा। वहां तो बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत विघ्न आते हैं, पर यहाँ नहीं आएंगे आपको। तो इसका भी अनुभव करके देखो। तो शीश महल में हम आए हैं, यहाँ पे अपनी रियलाइजेशन पावर बढ़ानी है, पांचों स्वरूप की भी महसूसता हो, कमी कमजोरी भी हमारी महसूस हो, हमें हमें मालूम चले हम कहाँ कहाँ किस किस स्टेप पर गलतियां कर जाते हैं। वहां हमें कोई रियलाइज भी कराता है ना, तो भी हम नहीं कर पाते, और यहाँ तो स्वयं हमारा बाबा बैठा है, बाबा रियलाइज करे बाबा के घर में। और क्या विशेषता है मधुबन की, पूरी ड्रिलिंग होगी आपकी, हो जाएगी ना ड्रिलिंग। ड्रिलिंग होती है, कुआं पानी निकालते हैं ना, ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिल मशीन डालते हैं, पहले मिट्टी बाहर आती है, कचरा बाहर आता है, गंदा पानी बाहर आता है, फिर जितना नीचे मशीन जाती है उसके बाद साफ पानी आता है। तो ड्रिलिंग होगी, घबराना मत, कई बार स्ट्रांग डोज भी मिलेगी। कई बार ऐसी बातें भी आएंगी, लेकिन घबराना नहीं, सब बाहर निकल जाएगा, निकल जाने दो। और आप रोज रात को लेटर लिखो बाबा को, या सुबह लिखो, जो भी मन की बातें हैं बाहर निकाल दो, यहां क्लीन हो जाओ। तब तो इसमें आने का लाभ है, और यहाँ के भी अगर हम मिक्स चलते रहे, नहीं तो फिर नेचुरोपैथी में गए, थोड़ा खा लिया, थोड़ा उनके अनुसार किया, थोड़ी एक्सरसाइज की, थोड़ी नहीं की, कुछ मनमानी की, तो पूरा लाभ नहीं मिलता है। तो अब पूरा लाभ लेना है तो अपनी एक्सरसाइज भी बराबर होनी है चाहिए, साकारी आकारी निराकारी, बुद्धि की एक्सरसाइज, पांच स्वरूप का अभ्यास, चार धाम की यात्रा, ठीक है, और सम्मान आपको रोज मिलेगा उसका, रोज अभ्यास, नशा और लेटर राइटिंग करें और चार्ट रखें। तो जितना हम करेंगे हमें फायदा है इस यहाँ पर आने का। और आप एक चीज और है, शांति वन में आप लोगों ने भट्टियां की होंगी और यहाँ आप करेंगे, उसमें और यहाँ में बहुत फर्क होगा। क्लास में भी जब 4000 बच्चों को पढ़ाया जाए और 200 बच्चों को दिया जाए, तो पर्सनल अटेंशन जो 200 बच्चों को मिलता है ना, वो 4000 बच्चों को नहीं मिल पाता है। और 4000 बच्चों में टीचर चाह के भी डिसिप्लिन नहीं रख पाता, बच्चे उठ जाते हैं, गायब हो जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, पानी पीने चले जाते हैं, कोई शॉपिंग करने चला जाता है, कोई कुछ कुछ करने चला जाता है। पर यहाँ एक भी जाएगा ना तो आपके मॉनिटर का ध्यान है आप पर, आपके टीचर का आप पर ध्यान है, पानी पीने गए कितनी देर में वापस आए, पानी पीने के बहाने इधर उधर तो नहीं हुए, फ्रेश होने गए तो वापस जल्दी से आते हैं, बाजार भी नहीं है आप बाजार जाके शॉपिंग कर लो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ तो पूरा एकांत है, पढ़ाई है, बाबा है। तो और आपको पर्सनल अटेंशन मिल रहा है, ये कम बात है? दृष्टि भी आप देखिए, पीछे वालों को भी मिलेगी, और 3000 में क्या मिलेगा? आई कांटेक्ट नहीं है, यहाँ आई कांटेक्ट लेवल पे तो बैठे हैं, आई कांटेक्ट लेवल पीछे वालों तक का भी है। तो दृष्टि का भी पूरा लाभ लेना है, टोली मिले दृष्टि लेके लेनी है, क्लास हो पूरा दृष्टि लेके, और अधिक लाभ कब मिलेगा? जितनी देर क्लास होती है, जितनी देर योग चलता है, हमारी बैठक स्थिर, आंखें स्थिर हो। अगर हम इधर उधर देखते हैं ना, ज्यादा हिलते डुलते हैं तो वातावरण ढीला होता है, आपके पड़ोस वालों को तो फर्क पड़ता है, और आप सामने एकटक होके देखते हो, आंखों की एकाग्रता, मन की एकाग्रता भी लाती है। अगर आंखें एकाग्र ना तो 50% मन एकाग्र हो जाता है, तो आंखों का कंट्रोल, आंखें खुली सामने, आंखें बंद करके बाबा की याद में बैठते हैं, आपको आप कहेंगे हमारी बंद हो जाती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे नींद हो जाती है। आज तो थोड़ा बहुत आएगी नींद, आई भी है क्योंकि सफर से आए हैं, फ्रेश नहीं है, पर रात को तो सब अच्छे से सोके बाबा की याद में, बाबा की गोद में सोके फ्रेश हो जाएंगे, फिर कल से अलर्ट, पूरे अलर्ट रहेंगे और एक्टिव रहेंगे। पंक्चुअलिटी प्लस रेगुलरिटी तो है ही, लेकिन पंक्चुअलिटी भी एक तपस्वी का क्वालिफिकेशन है, और आंखें खुली रखना भी एक तपस्या है। बाबा ने कहा है ना, भाई भाई की दृष्टि हमारी सबसे बड़ी तपस्या है, भाई भाई की दृष्टि बना ली, इससे बड़ा तप कोई नहीं है। और भाई भाई की दृष्टि की सफलता का आधार है, जब आप यहाँ बैठते हैं तो आंखें बिल्कुल सामने सुनाने वाले, योग कराने वाले के मस्तक पर, आत्मा पर होनी चाहिए, ये आंखों का तप है, इससे नीचे आंखें नहीं जानी चाहिए। अगर आप बिल्कुल सामने मस्तक पे आत्मा सामने वाले को देख रहे हो, तो आपने बैठकर ये तपस्या कर ली भ्रकुटि में आत्मा देखने की, फिर आप कार्य व्यवहार में भी, अपने दैनिक जीवन में भी आत्मा आत्मा का पाठ पक्का सहज कर लेंगे। और यहाँ एक घंटा अगर ये तपस्या नहीं की है बैठ के, तो कार्य व्यवहार में भी नहीं हो पाएगा। तो एक ये लाभ और है कि आप आंखों का तप करो, खुली रखेंगे, आसान नहीं है ये पलक झपक सकते हैं, पलक झपकने की सहज रखना है, नहीं तो आंखों पे पानी आएगा, प्रेशर पड़ेगा, नर्व्स पे पानी आ जाएगा, सिर दुखने लग जाएगा, आंखों पे प्रेशर नहीं डालना है, हेडेक हो जाता है, इजी वे। लेकिन ये तपस्या भाई भाई की खुली आंख से, और आप देखना इसका कितना लाभ मिलेगा। अभी हमने किया तो 6 महीना तक तो बहुत आसानी से लाभ रहेगा। तो कई चीजें ऐसी होती है, थोड़ा अपने आप को संयम में, अपने आप को मर्यादाओं में, अपने आप को नियमों में, अनुशासन में बांधना होता है, ये भी बंधन नहीं है, ये कल्याण के लिए अपने आप पर कंट्रोल पैदा करने के लिए, स्वयं पर कंट्रोल हो। और पहली सीढ़ी है ये, उसके बाद फिर हमारा आगे इंद्रियों पर कंट्रोल, फिर मन बुद्धि पर कंट्रोल, फिर हमारा पुराने संस्कारों पर, स्वभाव पर, और उसके बाद आगे आप बढ़ते हो तो पिछले हिसाब किताब पर भी विचेक कर पा लेते हैं, और विकर्मों पे भी पीछे, विकर्म हमारे योग अग्नि में चलते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, तो ये पहली सीढ़ी पे भी ध्यान देना है, यही हमारी साधना, फिर आराधना, फिर तपस्या, और तपस्या के बाद सिद्धि स्वरूप हो जाते हैं, तपस्या से सिद्धि मिलती है। और लेकिन हाँ, तपस्या के बाद एग्जाम जरूर देना पड़ता है, तपस्या परीक्षा लाती है। तो तपस्वी बने आप, तपस्या कर रहे हैं तो परीक्षा भी आएगी, आप तैयार रहना, वो आपकी तपस्या की परीक्षा होगी कि आपने कितनी तपस्या की, बड़ा पेपर भी आएगा, एग्जाम भी होगा। और उससे निकल गए, सफल हो गए, तो मंजिल है, सिद्धि मिली है। और क्या लाभ है यहाँ का? मैं ही बोलती जा रही हूँ, कुछ आप लोग भी बताओ। बताओ, बोलो, आप लोग किस भावना से आए हो? कई इस भावना से आते हैं, चलो जाए तीर्थ स्थान पर, तो कोई विघ्न है, कोई काम रुका हुआ है, वो पूरा हो जाएगा। कहीं कोई अड़चन आ रही है फैमिली लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, तो वो क्लियर हो जाएगी। ये छोटी सी बात है, इस भावना से नहीं। कई किस भावना से आते हैं, बाबा का घर है, चार धाम है, ठीक है, कुछ शांति बढ़ जाएगी, अशांत मन रहता है, कुछ शांति मिल जाए, ये हो जाए। लेकिन हमारा लक्ष्य छोटा नहीं है, ये बहुत छोटे लक्ष्य हैं, हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है। और हमें जड़ को मिटाना है ना, सारी बाबा ने बताया है, समस्याओं की, दुखों की जड़ क्या है? एक जना बोलो, देह अभिमान, फिक्का। और ये कहां से शुरू होता है? इसको क्लीन और ग्रीन करना है। तो यहां ग्रीन एटमॉस्फेयर है, ग्रीनरी ग्रीनरी है, हरियाली है, तो माइंड को भी क्लीन और ग्रीन बनाना है। इस लक्ष्य से आए, और कोई लक्ष्य नहीं है हमारा। और तपस्वी, उनकी क्या निशानियां बताते हैं लौकिक में, क्या बताते हैं तपस्या में? जो बैठते हैं ना, वो पद्मासन में बैठते हैं, बैठते हैं ये वाला पद्मासन, ठीक है। थोड़ा बहुत लाभ तो ये है, हम राजयोगियों को कमर सीधी होती है ना, बैकबोन स्ट्रेट, जब बैकबोन स्ट्रेट होती है तो हमारा नर्वस सिस्टम वर्क करता है, क्योंकि कनेक्शन है ना, और सेल्स भी एक्टिव होते हैं इससे हमारे। तो आप पद्मासन नहीं, लेकिन हाँ, कमर सीधी रख के बैठो, कोशिश करो। राजयोगों, राजयोगियों की मुद्रा यूनि यूनि, ऐसे नहीं, सीधी गर्दन सीधी, नहीं तो स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ऐसे गर्दन होगी तो। अब कमर झुका के ऐसे बैठोगे तो आपकी बैकबोन प्रॉब्लम हो जाएगी, होगी तो शरीर को भी ठीक रखना है, मुद्राएं भी ठीक हो। आप कमर सीधी रखोगे तो ना बैकबोन प्रॉब्लम होगी, ना आपको स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम होगी। और जो लोग ऐसे बैठते हैं ना, उनको घुटनों की प्रॉब्लम नहीं होती, मैं अर्ध पद्मासन में बैठी हूं, अभी फुल तो नहीं हूं, अर्ध में हूं, तो घुटनों की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये उन्होंने तो उस रूप में दे दिया पद्मासन, पर हमारी मुद्रा सहज मुद्रा है योगियों की, और सहज मुद्रा में कमर सीधी, कंधे सीधे, आंखें सामने। तो आपको कितनी भी देर बैठोगे ना, आपको कोई शारीरिक कष्ट नहीं होगा। और बाबा ने मन के लिए पद्मासन बताया है, मन हमारा कमल समान स्थिति, कमल फूल, पदम कमल, कमल का फूल। तो मन की स्थिति तो बाबा ने यही सिखाई है, न्यारी और प्यारी, वही है कमलासन धारी। और कमलासन धारी वो है जैसे कमल की पंखुड़ी पर पानी की बूंद नहीं ठहरती, अब पानी डालो ना फिसल के निकल जाती है। तो मन की स्थिति कोई भी बात का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, आई और गई, पंखुड़ी पे पानी की बूंद आती है और गायब गिर जाती है। तो मन में भी इफेक्ट आता है ना, कई बार हम उस बात को मन में बिठा लेते हैं, और मन में जब बिठा लेते हैं तो खुशी समाप्त हो जाती है, व्यर्थ आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, बहुत सारी बातें आ जाती है। तो कोई भी बात का जब इफेक्ट नहीं होगा तो रिएक्शन भी नहीं होगा, उसका रिएक्ट भी नहीं करेंगे। कमल समान स्थिति, न्यारी प्यारी। तो न्यारी प्यारी स्थिति उसके लिए ये सोमान बहुत अच्छा है, मैं महान आत्मा हूं और मेहमान हूं, साक्षी होके पार्ट पे जा रही हूं और साक्षी होके दूसरी आत्माओं के पार्ट को देख रही हूं, अपना पार्ट भी, स्वयं का रोल भी साक्षी होके कर रही हूं और दूसरी आत्माओं के रोल को भी साक्षी होके देख रही हूं। और मेरा साथी हर कार्य में साथी बाबा है, साक्षी और साथी, महान और मेहमान। महान आत्मा हूं तो विचारों में महानता, बोल में महानता, कर्म में महानता, व्यवहार में महानता। महान आत्मा और मेहमान, मेहमान तो वैसे भी उपराम है, मेहमान तो वैसे भी डिटैच। दो पॉइंट, तीसरा, मैं निमित्त हूं, कोई भी कार्य के लिए निमित्त है, निमित्त बन के अपना कर्म कर रहा हूं, मुझे बाबा ने कार्य दिया है, जिम्मेवार बाबा है, मैं निमित्त हूं। और निर्माणता, ये कुछ टिप्स है, ये इनका अगर हम अभ्यास करते हैं ना, फिर हम दिन भर बाबा के साथ का आनंद लेते हैं, एक मेंटल लिंक हमारा बाबा से जुड़ा रहता है कार्य में भी। जब मेंटल लिंक जुड़ा रहता है तो बैटरी कम से कम डाउन तो नहीं होती, नेगेटिव में बैटरी डाउन होती है और फास्ट होती है डाउन। और मेंटल लिंक जुड़ा रहता है तो चलिए आप उसको स्पीडली चार्ज नहीं होता है कर्मयोग में, लेकिन इतनी जल्दी वो बैटरी डाउन भी नहीं हो रही है। और उसके बाद जब आप बैठ के योग करते हैं ना, तो बैठ के योग करने से ये लाभ होता है, लिंक जल्दी हो जाता है, क्यों, पहले से ही प्रिपरेशन है माइंड की, पहले ही माइंड जुड़ा हुआ है, लिंक्ड है कार्य व्यवहार में। और बैठते ही आप स्मृति का स्विच ऑन करते हैं, एक दो संकल्प किया, स्मृति का स्विच ऑन किया और आपका कनेक्शन बाबा से हो जाएगा और आप पावरफुल योग में आ जाएंगे, पावरफुल होगा, फिर बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, फुल कनेक्शन तो फुल चार्ज। और वरना आप अन्य बातों से आ रहे हैं, मन बुद्धि अन्य बातों में है और फिर आप बैठते हैं ना योग में, तो एकदम अपने आप को डिटैच करना इम्पॉसिबल है। बाहर आप किसी से झगड़ा करके आओ या मोबाइल पे ही आप घर पे बात करके आओ, कोई सैड न्यूज सुन के आओ या कोई ऐसी न्यूज आप मोबाइल पे सुन के आ रहे हो, आप यहाँ आके बैठोगे तो कितनी देर, 5 मिनट तो वो बातें माइंड में घूमेंगी या नहीं घूमेंगी? घूमेंगी। फिर आएगा, अरे मैं ऐसे आंसर देता तो ठीक था, इसको ऐसे जवाब देना चाहिए था, ये बात कहनी चाहिए मुझे। अब मैं दोबारा उसको कॉल करूं, पर दोबारा कॉल कैसे करें, यहां बैठे हैं होता है। तो इसलिए बाबे ने हमें कहा है बच्चे कर्म योग पर, यहाँ कर्म योग क्या है, यहाँ आपको कोई कारोबार का कर्म नहीं है, लेकिन होल डे पूरा दिन आप जो यहाँ व्यतीत कर रहे हैं भोजन में जाना आना अपने शारीरिक नित्य कर्म, उसमें भी आपका मेंटल लिंक जुड़ा रहे। तब आप जब यहाँ के बैठेंगे तो आप स्मृति का स्विच ऑन करेंगे और आपका पावर हाउस से लिंक हो जाएगा और बैटरी फास्ट चार्ज होगी, तो डाउन नहीं हो बैटरी, ये ध्यान रखना। यहाँ चार्ज की और बाहर गए तो बैटरी डाउन कर दी, फिर आए फिर चार्ज हुई और फिर डाउन हो गई तो क्या हुआ, गेन तो नहीं हुआ ना, प्राप्ति तो नहीं हुई। बाबे के घर में ये फायदा है। और सब यहाँ फरिश्ते हैं, फरिश्ते तन से भी मन से भी, तन के मतलब ड्रेस से भी फरिश्ते हैं। फरिश्ते देखो आपके लिए चद्दर भी सफेद भी चाहिए, क्यों भी चाहिए, उड़ो सफेद चद्दर है ना, सफेद रंग है स्वच्छता पवित्रता निर्मलता उड़ने के लिए। और आप अगर रंग बिरंगे बैठे होंगे तो क्या होगा, क्या होगा इस सफेद चद्दर का फायदा क्या होगा, आप मैले पैरों से आओ मिट्टी के पैरों से आओगे धब्बे लगा दोगे फिर क्या हुआ, तो इसकी भी स्वच्छता, वस्त्र भी हमारे फरिश्तों जैसे, भोजन भी आपको योगियों का मिल रहा है फरिश्ता बनाने के लिए, मन भी आपका स्वच्छ क्लीन, ये कुछ बातें हमें 4 दिन विशेष अपनी तपस्या में ध्यान रखनी है। और बाबा का कमरे का एक लाभ और है, यहाँ पे बताती हूँ, 2 बजे खुल जाता है। बाबा ने अमृत वेले का समय 2 बजे दिया है, 2 से 5 ऑफिशियली, 4 से 5 हम लोग करते हैं संगठन में, और 2 बजे जो जाएंगे ना बाबा के रूम में तो बाबा को 2 ही बच्चे मिलेंगे, तो बाबा दिल से बातें करेगा, खूब करेगा। और 4 बजे जाएंगे तो 100 बच्चे बैठे होंगे तो बाबा आपको कितना टाइम देगा, 100 बच्चों में कितना टाइम मिलेगा बाबा आपसे, कितनी बातें करेगा, कितनी देर आपको देखेगा, 100 बच्चों को बाबा को देखना है तो आपको तो 2 ही मिनट देखेगा। और आप 2 बजे 3 बजे जाओगे तो 10 बच्चों में बाबा अच्छे से देखेगा आपको, प्यार की दृष्टि देगा, दिल की बातें होंगी और खूब लंबी बातें होंगी। तो ये लाभ है बाबा के कमरे में जाना और दिल से बातें करना, अच्छे से बाबा से दृष्टि लेना, खूब बाबा से भरपूर होना है।
लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है, लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है, लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही।